हाँ जी,
अभी अभी वाणी में जो आए हाफ एंड हाफ है, हाफ एंड हाफ ये पत्थर और पानी,
माना भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों आधा आधा हैं। तो कोई की बुद्धि में ज्यादा बैठता है, कोई की बुद्धि में कम बैठता है। अगर एवरेज निकाले तो हाफ एंड हाफ हो जाते हैं। और
विजय माला को गायन होता है, रुद्र माला को महिमा होता है, ये गायन और महिमा में अंतर क्या है?
नहीं, आपने ठीक से नहीं पूछा। जो महिमा है वो ही गायन होती है, लेकिन रुद्रमाला का पूजन नहीं होता है। महिमा और गायन है, लेकिन विजयमाला पूजी जाती है, क्योंकि पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। तो प्योरिटी को रुद्रमाला के मण के जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं भारत में, और भारत के राजाएं ज्यादा पतित होते हैं, ज्यादा पतित होने के कारण उनमें अपवित्रता समा जाती है। बाबा बोलते हैं ये रुद्रमाला के मण के पुरुष स्वभाव संस्कार के हैं, राजा मोस्टली पुरुष ही बनते हैं या स्त्रियां भी बनती हैं? पुरुष ही बनते हैं। तो जो पुरुष है भारत के खास राजा बनने के स्वभाव संस्कार वाले हैं, उनको दुर्योधन दुशासन कह दिया है। वो स्वर्ग का गेट नहीं खोल सकते, इसलिए जो पवित्रता को धारण करने वाली कन्याएं माताएं स्वभाव संस्कार वाली हैं, उनके हाथ में स्वर्ग का गेट खोलने का कर्तव्य रखा हुआ है। और
बाबा, मन की संकल्प बुरी या अच्छी कैसी उठे, किस आधार पर उठे?
हाथ उठाना।
हाँ,
मन की संकल्प अच्छी या बुरी,
पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर।
कर्म बाद में हो,
कर्म पीछे हो चुके हैं 63 जन्मों में, और अभी शूटिंग हो रही है। जो शूटिंग का काल चल रहा है संगम युग में, ये संकल्पों के आधार पर चलता है। अच्छे संकल्प अच्छी दुनिया की शूटिंग कर रहे हैं, वो अच्छे संकल्प आत्मा को मौज में लाते हैं, जिसके लिए बाबा ने बोला है संगम युग है मौजों का युग। तो बुरे संकल्प चलेंगे तो मौजों का युग होगा, या अच्छे संकल्प चलेंगे तो मौजों का युग होगा? है, अच्छे संकल्प चलते हैं, श्रीमत के अनुकूल चलते हैं तो मौजों का युग है। अगर गंदे संकल्प चलते हैं, मनमत पर चलते हैं, मनुष्यों की मत पर संकल्प चलते हैं, तो मौजों का युग नहीं बनता है, दुख की दुनिया बन जाती है। इस तरह हर आत्मा मनुष्य आत्मा का भाग्य उसकी मुट्ठी में दिया है भगवान ने, परंतु ये अच्छे संकल्प बुरे संकल्प पूर्व जन्मों के ऊपर आधारित हैं। जिन्होंने जन्म जन्मांतर पर अच्छे कर्म किए हैं, उनके संकल्प भी परसेंट में परसेंटेज में अच्छे ही अच्छे चलेंगे, बुरे संकल्प बहुत कम चलेंगे। और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, श्रीमत के विपरीत कर्म किए हैं अनजान में, वो भी फाउंडेशन कहां पड़ा है? बुरे कर्म करने का फाउंडेशन कहां डाला गया? कौन से युग में? संग युग में ही डाला जाता है। और
बाबा, यज्ञ का आदि में बाप को, बाप का स्वरूप को मालूम नहीं था, तो कृष्ण बच्चे को कैसे समझते हैं?
ये कैसे कह दिया कि बाप को बाप का स्वरूप नहीं मालूम था?
यज्ञ छोड़कर चले गए ना?
हैं? यज्ञ छोड़ करके चले गए या माया के युद्ध में लड़ते लड़ते देह अवसान को पाप प्राप्त किया? क्या हुआ? बाबा ने तो बोला है लाश भी गुम कर दिया। तो हार हुई या जीत हुई? जीत हुई। उस समय तो हार हो गई, जिसके लिए कहा गया राम फेल हो गया, लेकिन उसका कारण भी मुरली में बताया, क्यों फेल हो गया?
उतना ज्ञान नहीं था,
क्योंकि उस समय इतना ज्ञान नहीं था। और अब है, अब बाप ने पूरा ज्ञान बच्चों को दे दिया या कुछ अपने पास रखा? दे दिया। अब जिन बच्चों ने उस ज्ञान को धारण किया वो तो फेल नहीं हो सकते। ये प्रैक्टिकल जीवन में धारणा की बात है। यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा को इतना ज्ञान नहीं था, 100% पक्का निश्चय नहीं हुआ कि मैं ही राम बाप वाली आत्मा हूं, मेरे से ही कृष्ण बच्चे का जन्म होगा, जबकि जाने अनजाने उनके मुख से जो ज्ञान का बीज निकला वो माता के द्वारा दादा लेखराज की बुद्धि में घर कर गया। क्या बीज निकला? दादा लेखराज के साक्षात्कारों का साक्षात्कार किसको हुआ? कृष्ण वाली आत्मा को, उनकी बुद्धि में पक्का बैठ गया कि मैं ही कृष्ण वाली आत्मा हूं, मुझे संगम युग में ब्रह्मा के रूप में सफेद पोष के रूप में पार्ट बजाना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है और विनाश का साक्षात्कार करके वो रोने भी लगे। विष्णु का भी साक्षात्कार हुआ। और
बाबा, अमृत वेले में दुश्मन आत्मा को ऊपर शुभ भावना होता है, वही दिन में आगे आए तो अशुभ भावना होता है, इसका मतलब क्या है?
क्या समझा इन्होंने? क्या पूछा? कुछ समझा? अरे कोई ने भी समझा तो बताओ हिंदी में।
अमृत वेले में है, अमृत वेले में
हाँ
दुश्मन आत्मा पर
दुश्मन भी दुश्मन आत्मा है उसके ऊपर भी सुख भावना
अमृत वेले
के वहीं पे सुख भावना
दुश्मन आत्माओं के ऊपर भी सुख भावना होती है ये पक्का है, है?
पक्का है।
कच्चा तो नहीं है। अरे इसके विपरीत बात किसी की बुद्धि में हो तो बता दो कि अमृत वेले जो विरोधी आत्माएं हैं उनके लिए भी उपकार की भावना पैदा होती है या अपकार की भावना भी पैदा हो जाती है, होती है या नहीं होती है, हैं? अरे अच्छा बताओ, अमृत वेले कुंभकर्ण नींद के रूप में सवार होता है या नहीं होता है? होता है। अगर कुंभकर्ण जो रावण का भाई है वो सवार होता है असुर के रूप में तो दुष्ट संकल्प सवार नहीं हो सकता? अरे हो सकता है कि नहीं? हो सकता है और होता है कोई कोई को। ये प्रैक्टिस की बात है, ज्ञान की मजबूती की बात है। जिनमें गहराई तक ज्ञान भरा हुआ होगा वो दुष्ट संकल्पों का चाहे अमृत वेला हो चाहे दोपहर हो उन दुष्ट संकल्पों का तुरंत काट करेंगे, ज्ञान की तलवार की धार से काट करेंगे। कच्चे ज्ञानी होंगे या अज्ञानी होंगे, परसेंटेज में ज्यादा अज्ञानी होंगे तो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे दुष्ट संकल्पों को। और
बाबा ज्ञान में पूरा लगन है, ज्ञान में लगन है फिर भी वो
है,
ज्ञान में बहुत लगन है,
बहुत लगन है।
हाँ जी, उनको आने के लिए बहुत बार बार विघ्न आता है, फिर उनको ज्ञान में नहीं आ सकता।
ज्ञान में पूरी लगन है तो आ गया ना, ज्ञान में पूरी लगन है तभी तो आ गया ना। हैं? माना ज्ञान पूरा बुद्धि में आ गया लेकिन जीवन को प्रैक्टिकली ईश्वरीय सेवा में अर्पण करने में विघ्न आ जाते हैं, ये कहना चाहते हाँ, इसलिए आ जाते हैं कि पूर्व जन्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है। शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है, पूर्वजन्मों में कोई अच्छा कार्य करने के लिए कोई तत्पर हुए और विघ्न डालने वालों ने विघ्न डाल दिया, तो जिन्होंने विघ्न वहां डाला है और वो यहां ज्ञान में आ जाएं तो क्या रिजल्ट होगा? है उनको विघ्न आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। अच्छा
बाबा, एक वर्ड आया हुआ है महामाया, माया और महामाया में क्या?
हाँ, एक होती है माया, बेसिक ज्ञान में चलने वाली होगी, और एडवांस में माया होती है या नहीं होती है? है? बीज रूप आत्माओं में माया का प्रैक्टिकल रूप होगा या नहीं होगा? है? अरे बीज ज्यादा पावरफुल होता है या जड़ें ज्यादा पावरफुल होती हैं? हाँ, तो वो माया माया का रूप है जो फाइनल पेपर में महामाया के रूप में आ जाएगी। जैसे बाबा ने बोला है कि माया तंग आ गई है, तो जब अब जीवित थी बेसिक में तब बोला तंग आ गई है, फिर जब शरीर छोड़ दिया तब बोला माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है। तो माया भी रचना है, बाप की बेटी है, और प्रकृति भी रचना है। ज्यादा पावरफुल कौन है? प्रकृति ज्यादा पावरफुल है या माया ज्यादा पावरफुल है? हैं? माया ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि बुद्धिमान बाप की बुद्धिमान बच्ची है और प्रकृति तो जड़ है, लेकिन पावरफुल ज्यादा है। प्रकृति जब विकराल रूप धारण करेगी, बड़े बड़े भूकंप इस पृथ्वी पर आएंगे, तो माउंट आबू जैसे पहाड़ भी जमीन के गर्त में समा जाएंगे। जिसके लिए कहते हैं कि चारों तरफ विनाश होगा, भूकंप आएंगे, लेकिन ये एक ही ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ आबू पर्वत दृढ़ रहेगा। वो भी अंत में प्रकृति की चपेट में आ जाएगा। तो प्रकृति ज्यादा पावरफुल हुई या माया ज्यादा पावरफुल हुई? इसलिए माया प्रकृति से हाथ मिलाई लेती है और प्रकृति बुद्धिमान माया के इशारे पर चलती है। तो प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी या सामान्य रूप में रहेगी? विकराल रूप धारण कर लेती है। जैसे लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहा जाता है, यानी जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों के संस्कार मिलकर के जब एक हो जावेंगे, तो जगदम्बा का नाम क्या पड़ जावेगा और लक्ष्मी का नाम क्या पड़ जावेगा? महालक्ष्मी। वो लेफ्ट हैंड, वो राइट हैंड। ऐसे ही माया क्या बन जाती है? महामाया बन जाती है। और
योग माया भी है।
हाँ जी, मंदिर बना हुआ है दिल्ली में। क्या? कौन सा मंदिर बना हुआ है? योग माया मंदिर बना हुआ है। जब योग माया मंदिर में वर्ष में मेला होता है बड़ा, तो राष्ट्रपति को भी वहां जाना पड़ता है उस मेले में। आज भी ऐसी परंपरा बनी हुई है जिसका नाम योग माया है। तो अच्छी योगिन होगी या साधारण योगिन होगी? है? अरे कैसी होगी? है? अच्छी योगिन है। बेसिक में राजयोग की जो फिल्म बनाई गई थी उस बेसिक में, राजयोग की फिल्म में उस योग माया का बड़ा सुंदर चित्र दिखाया हुआ है। बाद में जब एडवांस निकला और वो मेहरौली से जहां योग माया मंदिर बना हुआ है वो आत्मा ज्ञान में निकल पड़ी, जिसका चित्र उन्होंने राजयोग की फिल्म में डाला हुआ था उस चित्र को उन्होंने उड़ा दिया। फिर भी वो पुरानी राजयोग की फिल्म ढूंढने से मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो नाम पड़ता है योग माया। कैसा योग लगाती है? है? माया भी योग लगाती है। और कहां से निकलती है? है? मैरवली से निकलती है। एडवांस में जब वो निकलती है शुरुआत में तो महारौला मचाती है। जो मुरली में बोला, मैरवली से, मैरवली में ही योग माया मंदिर है। और है
मुरली पाई अर्जुना अपने गया था, कृष्णा अपने गया
क्या बोले?
कृष्ण का तन में नहीं आता,
अर्जुन के तन में नहीं आता हूँ, कृष्ण के तन में नहीं आता,
अर्जुन के तन में नहीं आता हूँ
और कृष्ण के तन में भी नहीं,
कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। अच्छा, अर्जुन किसको कहा जाता है? है? अर्जुन के लिए गीता में क्या लिखा है? हे अर्जुन, द्रौपदी और गीता का कनेक्शन है ना, तो अर्जुन और द्रौपदी के लिए गीता में लिखा है, हे अर्जुन तू ऐसी करनी कर जो नर से नारायण बने, और द्रौपदी के लिए तू ऐसी करनी कर जो तू नारी से नारायणी बने। तो अर्जुन का रथ लेते हैं, जिसका रथ लेते हैं वो सद्भाग्य का ज्यादा अर्जन करेगा या दूसरा कोई करेगा? है? अरे वही करेगा। भगवान से ज्यादा दलाली कोई और दे सकता है क्या? दे सकता है? नहीं दे सकता। तो ये बात तो नहीं है कि अर्जुन के रथ में आता है। पांच पांडवों में से एक भाई है तीसरे नंबर का, जिसमें भगवान बाप आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अर्जुन माने सद्भाग्य का अर्जन करने वाला। तो दुनिया में जो सद्भाग्य का अर्जन करता है उस सद्भाग्य के रिजल्ट में उसको क्या पद मिलता है? अरे कोई पद मिलता है कि नहीं मिलता है? जो पद है बड़े बड़े दुनिया के महत्वाकांक्षियों को नहीं मिल पाया, हिटलर को, नेपोलियन को, मुसोलिनी को नहीं मिल पाया, वो कौन सा पद है? विश्व की बादशाही। ये अर्जुन को सदभाग्य मिलता है और अर्जुन के ही शरीर रूपी रथ में आता है। वो कृष्ण नहीं है। कौन है? अरे सतयुग का कृष्ण वाली आत्मा है वो अर्जुन है? नहीं है। वो कौन सी आत्मा है? संगमयुगी कृष्ण की बात है। जो बच्चे के रूप में कृष्ण की पूजा होती है उसे कृष्ण की बात नहीं है। और
विराट के आस्था में रसोई का काम करता है, मना बेहद में कहो। विराट के आस्था में रसोई का काम करता है, मना बेहद में कहो।
क्या बेहद?
भीम रसोई आस्थान में,
भीम
विराट के आस्थान में रसोई का काम करता है,
हाँ।
तो उसे बेहद में कहो।
अरे रसोई में क्या किया जाता है? हैं? खाना पकाया जाता है। ज्ञान मार्ग में भोजन किसे कहा जाता है? हैं? ज्ञान को भोजन कहा जाता है, योग को भोजन कहा जाता है। योग की खुराक, खुराक माने खाना, वो योग की खुराक कौन तैयार करता? भीमसेन को दिखाया है। बहुत भयंकर है। कितना भयंकर है? 100 कौरवों को अकेले ही मारता है और 100 कीचकों को भी मारता है, पकड़ता है, और अनेकों राक्षसों को मौत के घाट उतारता है। तो राक्षसी दुनिया का अंत करने वाला कौन हुआ? भीमसेन। कौन सी ताकत है उसके अंदर? है, कहते हैं उस भीमसेन के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। ये तो अतिशयोक्ति दिखाई है कवियों की भाषा में। वास्तव में योग का बल था, जिस योग के बल के आधार पर उसको इतना बलशाली दिखाया गया। और वो कौन सा खाना पकाता था? है? अरे स्थूल भोजन पकाता था क्या? कौन सी खुराक बनाता था? है? ज्ञान की, याद की खुराक बनाता था। और
बाबा, बाबा ने हमारे साथ बहुत नाटकबाजी कर रहा है, क्योंकि ये सारी पढ़ाई कृष्ण बच्चे के लिए है। वो ही अनन्य मुरबी सिकिलदे बच्चे है बाबा।
हाँ,
ये सारी पढ़ाई कृष्ण बच्चे के लिए है।
सबसे ज्यादा सहन किसने किया है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में इतने ढेर के ढेर पुरुषार्थी हैं, उन पुरुषार्थियों के बीच में सबसे जास्ती सहन किसने किया है? सहनशीलता है सर्व गुणों का राजा। किसने किया? तो आपके साथ पार्शलिटी किए किए। चुप काय के लिए बोलो ना।
वो बच्चे का पढ़ाई के लिए सारे काम करता है ना बाबा?
है?
बाबा,
हाँ।
वो बच्चे को पढ़ाई के लिए सम
माना, उसमें कोई गुण नहीं है,
निश्चय बुद्धि नहीं है ये।
अरे निश्चय बुद्धि बात है, तुम निश्चय बुद्धि हो
उनके लिए।
हैं? उनके मुकाबले आप ज्यादा निश्चय बुद्धि बनेंगे, ज्यादा काम करके दिखाएंगे दिखाएंगे है? अरे उस आत्मा ने तो सारा जीवन व्यक्त में भी और अव्यक्त में भी कहाँ लगाया है? इस ईश्वरीय सेवा में लगाया। राम वाली आत्मा के लिए कहेंगे कि पूरे 100 साल इस यज्ञ में लगाए, कहेंगे आपके लिए कहेंगे। और
बाबा अष्ट सिद्धि मना भक्ति मार्ग में 8 को शक्ति दे दिया है, इसका मतलब अनिमा महिमा गरिमा लगीमा प्राप्ति सकम्या वशिष्व विषत्व, इसका मतलब
बाबा ने किसी मुरली में बोला है कि शास्त्रों को पढ़ के और टीवी देख करके जो बातें निकलती हैं उनका अर्थ पूछना है। शास्त्रों का वो सब भूसा है, सार कौन सुनाता है? बाबा सुनाते हैं, तो सार की बातों को देखना है या जो असार है भूसा है उसका अवलोकन करना है।
ब्रह्मा बाबा अष्ट सिद्धि और नौ निधियों का राजा है ना, इसका मतलब
ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं बोला है कि अष्ट सिद्धियों का प्राप्ति करने वाला है। अगर वो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति करने वाला है तो फिर 68 में वो आत्मा संपन्न हो जानी चाहिए। हो गई है? नहीं हो गई? ये सब शास्त्रों की बातें उठा करके बुद्धि खराब करने की बात है क्या?
नहीं।
हाँ खराब नहीं तो बताओ। है जो शास्त्रों में भूसा भरा हुआ है उसका अर्थ क्या पूछेंगे? हैं? ऐसे अर्थ तो है लेकिन निरर्थक है बुद्धि लगाना। अणिमा का मतलब है अनुरूप धारण कर लेना। कैसा रूप धारण कर लेना? अणु। अणु बहुत छोटा होता है ना। हनुमान ने क्या किया? शास्त्रों में दिखाते हैं कि एक सुरसा राक्षसी थी, बड़ा मुंह उसने फैलाया। उन्होंने क्या किया हनुमान ने? छोटा रूप धारण करके उसके मुख में प्रवेश कर गए। अब इन बातों का अर्थ है या निरर्थक बातें? तो अणिमा का मतलब है छोटा रूप धारण करना। लघिमा का अर्थ है लघु रूप धारण करना। रूप तो है लेकिन अनुरूप नहीं है, छोटा रूप है। ये नाम दिए हुए हैं शास्त्रों में। जैसे नाम दिए हुए हैं कि शरीर में 8 चक्र हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, ये 8 चक्रों को भेद करके जब कुंडलनी शक्ति सहस्त्रासार में पहुंचती है तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब ज्ञान में इन बातों का कोई अर्थ है? है? कोई अर्थ नहीं। और
बाबा बीके वाले पहले 5 बार नमाज करता था माने ट्रैफिक कंट्रोल, अब वो 7 बार करता है।
पहले जब करता था तब कंट्रोलर कौन थी? नाम क्या?
माया।
नाम बताओ।
प्रकाशमणि दादी।
प्रकाशमणि दादी आपने नाम बताया। फोटो खींचो। माया उनका नाम दिया और माया भी दुनिया कौन से धर्म से शुरू होती है? इस्लाम धर्म से। तो इस्लाम धर्म की वो हेड हो गई, और इस्लाम धर्म से ही मुसलमान धर्म निकलता है। मुसलमानों में आज भी ये रिवाज है, कितनी बार नमाज पढ़ना है? पांच बार। तो जिसमें ऐसे संस्कार होंगे, जिसने ऐसा नियम कानून निकाला होगा मुसलमानों में, वो यहां शूटिंग नहीं करेगा? ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग करेगा या नहीं करेगा? पांच बार नमाज पढ़ने की। तो समझ में आया?
सात बार करते हैं।
अब कंट्रोलर कोई दूसरा है या वो ही है? अब तो दूसरा हो गया। तो जो राजा आता है वो अपन ही चलाता है। और
शंकर जी पुरुषार्थ थी
हैं?
शंकर जी पुरुषार्थ थी साकारी स्टेज वाला, कभी संपन्न बनने से नारायण बन जाते साकारी स्टेज वाला, बीच में छोड़ छोड़ के बात सोना निराकार स्टेज पर जा रहे थे, तो शिवलिंग बन गए। वो कितने समय तक रहेगी वो शिवलिंग का स्टेज?
अरे किसी ने सुन लिया हो तो बताओ जरा। अरे आगे तो किसी ने सुना ही नहीं, हम कैसे सुनेंगे? आप आगे आके बैठ जाओ।
शंकर है
आ जाओ आ जाओ
आकारी स्टेज वाला शंकर
शंकर है मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज वाला।
संपन्न बनने से नारायण बनते हैं।
वो बीज रूपी स्टेज धारण करने से अचिंत्य असोचता बाप समान बन जाता है।
तो नारायण स्टेज
है?
नारायण स्टेज तो साकारी है।
नहीं,
नारायण
जो स्टेज है वो भगवान की स्टेज नहीं है, शंकर से उसकी तुलना नहीं कर सकते। शंकर में बाप प्रवेश करता है, और बाप प्रवेश करके उसको आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता है। नारायण देवता है, भगवान नहीं है।
संपन्न होने से नारायण बनता है ना?
बल बल संपन्न बनता है। जब जब संपन्न बनता है वो स्टेज नीची है भगवान से या ऊंची स्टेज है?
नीचे नहीं, लेकिन वो स्टेज कितने समय तक रहेगी? वो भगवान का स्टेज,
वो नारायण जो है वो इस सृष्टि पर परमधाम से आत्मा आने के बाद नारायण है, या इस सृष्टि की मनुष्य आत्माओं को या कोई भी आत्माओं को परमधाम ले जाने से पहले वाला पार्ट है?
लेकिन विश्व महाराजन नारायण बनते हैं।
विश्व महाराजन जो नारायण बनता है वो सिर्फ कहा जाता है, वो है नहीं। वो सोलह कला संपूर्ण कहा जाता है। वो नारायण जो है वो राक्षसों की दुनिया को कंट्रोल करेगा या सिर्फ देवताओं की दुनिया को कंट्रोल करेगा? इसलिए बहुत अंतर है विश्व महाराजन में। शंकर विश्वनाथ कहलाते, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ये विश्वनाथ का टाइटल वास्तव में नारायण का नहीं है, किसका है? शंकर का है। शंकर अलग पार्ट, और उसमें जो राम वाली आत्मा है कृष्ण वाली आत्मा है वो जो कंबाइंड पार्ट बजाती है वो देवता का पार्ट बजाती है विष्णु। और
तो वो पार्ट 36 तक चलेगा क्या?
कौन सा?
भगवान का पार्ट जो बाप समान स्टेज बनते हैं ना, सो ऊपर से निराकारी स्टेज।
आत्माएं परमधाम वापस कब जाएंगी सारी? बस और
हरेक का पुरुषार्थ ड्रामा में नंदा है,
है।
ऐसा बोलने में
हाँ
पुरुषार्थ भी ड्रामा में नंदा
बिल्कुल नहीं नंदा है हाँ और आगे चलो हाँ जी अरे इनकी कोई बात है सो तो सुन लो हैं हाँ अरे बेशक में घुस जाओ हाँ जी
नवग्रह है ना
हाँ
वो अमर को अमर ऊपर असर पड़ेगा क्या
हैं
असर पड़ेगा ऊपर नवग्रह नवग्रह है ना
हाँ
अमर ऊपर में असर पड़ेगा क्या बोल रहे बाबा नवग्रह
नवग्रह
असर पड़ता है क्या अमर ऊपर इंसान को ऊपर असर पड़ेगा
क्या मनुष्य के ऊपर प्रभाव
नवग्रह है ना बाबा
अरे मनुष्यों के ऊपर मनुष्यों के ऊपर चैतन्य का प्रभाव पड़ता है या जड़ पदार्थ का प्रभाव पड़ता है चैतन्य का प्रभाव पड़ता है तो चैतन्य में उन ग्रहों के मानिंद कोई मनुष्य आत्माएं हैं श्रेष्ठ जिन मनुष्य आत्माओं का भी पुरुषार्थ करने वालों के ऊपर प्रभाव पड़ता है जो उनके पंजे में फंस जाती हैं, वो नौ प्रकार की आत्माएं हैं उनमें एक हीरा है और बाकी अलग अलग कम वैल्यू वाले रत्न हैं, उनको ही नवग्रह कहा जाता है कोई ग्रह बहुत बड़ा है और कोई ग्रह बहुत छोटे छोटे हैं। ये सारे ग्रह ये आसमान के सितारे हैं ग्रह नक्षत्र हैं और तुम बच्चे हैं धरती के चैतन्य सितारे हो ग्रह नक्षत्र हो उन जड़ का प्रभाव हमारे ऊपर कुछ नहीं पड़ता किसका प्रभाव पड़ता है हैं उन ग्रहों के मानिंद उन ग्रहों का जिनको उदाहरण दिया जाता है उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है तो हम भगवान की बात को भूल जाते हैं और उन मनुष्यों के आर्डर पर चल पड़ते हैं
और
चंद्रमंडल आगे जाके चलता है बाबा है चंद्रमंडल है ना
हाँ
आकाश में
हाँ
आगे जाके अभी चलता है
आने जाना करते
हैं आने जाना का अभी बुकिंग करता है बोलो
चंद्रमा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कहाँ आने जाने की शूटिंग करता है
चंद्रमंडल
चंद्रलोक में
अभी अभी लोग चंद्रलोक
चंद्रलोक में
चंद्रलोक आने का जाने का बुकिंग चल रहा है
जो गुलजार दादी जो पार्ट बजाती है वो चंद्रलोक नहीं है उस संगठन में कौन सी ऐसी आत्मा है जो संगठन के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर मन बुद्धि में छाया रहता है कौन है जब आवाहन करते हैं गुलजार दादी में तो किसका आवाहन करते हैं है? ब्रह्मा बाबा का तो वो ही चंद्रलोक है
ऐसा प्रैक्टिकल में मैं आके मैं जाके ऐसा आ सकते हैं
गुलजार दादी का पार्ट ब्रह्मा के रूप में जब वाणी चलाने का चलता है तो वहाँ चले जाना वो चंद्रलोक
लोग बाबा अभी प्रैक्टिकल में चलता है
अरे हाँ वो ही प्रैक्टिकल में चलता है वो प्रैक्टिकल में हम आपको इन आँखों से दिखा सकते जो प्रैक्टिकल में होगा वो आँखों से देखा जा सकता है कि नहीं कानों से सुना जा सकता है कि नहीं सुना जा सकता है आप अपना चंद्र रोक आँखों से दिखाएंगे हंसी मोड़ाई दिया
बाबा कपिल में एक दिन तो संकल्प कर दिया सोने का समय बाबा आपके गोद में लेके जाओ पहले सुबह मैं भाई लोग ऐसा जागने का ट्राई कर दिया मैं जब कुछ नहीं चाहते नहीं बाद में दस दस पंद्रह मिनट के बाद आरती प्रिपेयर करके क्लास में चले गए। ये कैसे बाबा, बहुत अनुभव हो गया, बहुत अच्छा।
क्या पूछ रहे हैं?
वो अनुभव बता रहे हैं, बिल का अनुभव।
हर एक आदमी के स्वप्न और साक्षात्कार अलग अलग होते हैं।
स्वप्न नहीं बाबा, संकल्प कर दिया। सोने का समय कंपिल में
जो असलियत है वो सबको अनुभव होना चाहिए या आप अकेले को अनुभव होना चाहिए?
वो बात अलग।
अरे वो बात अलग क्यों?
मैंने ऐसा
वो संकल्प किया इसलिए उनको अनुभव हो गया
बस।
मैं बाड़ी पे नहीं चाहते ना, नहीं हो गया वो, ऐसा हो गया भाई, बहुत अच्छा अनुभव हो गया, बहुत हल्के हल्का फुल्का हो गया, आत्मा
स्वर्ग में चले गए।
बहुत अच्छा हो गया
वो, जैसे जैसे भक्ति मार्ग में साक्षात्कार हो जाता है, खुश हो जाते हैं, बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, ऐसे अल्पकाल का अनुभव हो गया ना, स्वर्ग में तो नहीं चले गए।
चले गए बाबा के गोद में।
अच्छा,
सोने का ऐसा संकल्प कर दिया मैंने मेरा मन में, ऐसा हो गया
बाबा। ब्रह्मा गुणग्राहिता, ब्रह्मा गुणग्राहिता।
हाँ जी,
धर्मराज अवगुणग्राही होता है।
हाँ ठीक है, ब्रह्मा जो सहनशीलता का पाठ बजाता है साकार जीवन में, कितनी आत्माओं का उसने सहन किया, कोई हिसाब है? और जिन आत्माओं ने ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को सहन कराया उन आत्माओं के साथ हिसाब किताब कब पूरा होगा ब्रह्मा का? तो किस रूप में पूरा होगा? धर्मराज के रूप में पूरा होगा। जो मृदुल पार्ट बजाने वाला आज है वो कल कड़क पार्ट बजाने वाला भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो साकार में गुणग्राही था, और जब आकारी स्टेज संपन्न स्टेज बन जाती है तो उसको लकब मिलता है धर्मराज युधिष्ठिर का। क्या? युद्ध में स्थिर रहने का। और
बाबा दीपावली के दिन महालक्ष्मी का पूजन करते हैं।
हाँ,
तो जब ज्ञान मार्ग में आने के बाद में महालक्ष्मी का पूजन वगैरह, मैंने पहले सुना था कि महालक्ष्मी का पूजन करने से लक्ष्मी आती है, और
अभी तो बताया कि जगदम्बा और लक्ष्मी इन दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के जब एक हो जाएंगे, लक्ष्मी है विजयमाला की हेड और जगदम्बा है रुद्रमाला की मुख्य आत्मा, तो दोनों का स्वभाव संस्कार का मेल होता है तब ही महालक्ष्मी बनती है। ऐसे ही दीपावली जब आएगी, नाम ही रखा गया दीप अवली, अवली माने कतार। सबसे पहले 108 आत्माओं का आत्मा रूपी दीपक जग जाएगा 2500 साल के लिए। जब से जगना शुरू होगा 108 आत्माओं का दीपक, तब से ही दीपावली बनाई जाती है। और दीपावली में जो ढेर के ढेर दीपक जलाए जाते हैं, उनमें सबसे पहला दीपक कौन सा जलता है? है धर्मराज का दीपक जलता है। तो वो धर्मराज का दीपक कब जलता है, उसका टाइम क्या है? है
2018।
हाँ जी, और पूरी माला कतार तैयार होगी, उसका टाइम क्या है?
और
10 साल के बाद। और 10 साल नो दे हुए और है
मंडिया में बीके सेंटर में सबको संदेश दिया इसलिए वो सर्व मनुष्य को पिता निराकार शिव परमात्मा चित्र है ना वो चित्र में दिए नीचे शंकर जी है ना शंकर जी को निकाल के सामने
दूसरा कौन सा
धर्म
पिताओं का रखा है और शंकर जी का निकाल दिया
का, मिस्टिक का शूटिंग
हाँ हाँ तो देखने वालों से कहो कि ये चित्र तो नया बनाया गया है और हुबली में जो चित्र तैयार किया गया था जिसमें मुख्य स्थान पर शंकर को धर्म पिता के रूप में दिखाया गया है वो ओल्ड चित्र है और ओल्ड के बारे में क्या कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड तो ये झूठा चित्र है डुप्लीकेट है और ये डुप्लीकेट बनाने वालों ने ये पैसे कमाने के लिए बनाया हुआ है वो हुबली का ओरिजिनल चित्र ले जाके वहां रख दो और लोगों को समझाना शुरू कर दो
पूर्वजों को भोग चढ़ाता है पूर्वजों को भोग चढ़ाता है साल में एक बार हम ब्राह्मण लोग
क्या चढ़ाता है भोग
पूर्वजों को
हाँ श्राद्ध करते हैं हाँ
ब्राह्मण लोग करना है नहीं करना
पूर्वज दिखाई पड़ते हैं तुमको दिखाई पड़ते हैं और भगवान दिखाई पड़ता है कि नहीं है अरे भगवान दिखाई पड़ता है कि नहीं अरे अरे तीसरे नेत्र से सही दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता है
अभी पड़ रहा है
आप क्यों बोल रहे हैं वो उसको अपने मुंह से बताने दो निश्चय बुद्धि है या अनिश्चय बुद्धि है
दिखाई पड़ रहा है
हैं
दिखाई पड़ रहा है
दिखाई पड़ रहा तो जब भगवान दिखाई पड़ता है तो भगवान है और जो दिखाई नहीं पड़ते हैं वो पूर्वज हैं या नहीं है हैं नहीं है देवताओं की भी लोग पूजा करते हैं कोई में देवी प्रवेश कर जाती है कहती है मैं महादेवी हूं मैं महाकाली हूं तो क्या देवियां होती हैं इस जमाने में भूत प्रेत आत्माएं हैं वो झूठ बोलती हैं कि मैं ये हूं मैं वो हूं तो उनकी पूजा करना चाहिए हैं
पूर्वजों का पूर्वज है
देखो पूर्वजों के पूर्वज अष्टदेव तो इधर हैं जो सारी दुनिया के पूर्वज हैं पहले उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है और
बाबा रामकृष्ण परमहंस और शारदा मणि देवी गृहस्थ में रहने तो पवित्र में रहा
हाँ।
वो जगत पिता जगदम्बा का पात्र है
राम और कृष्ण शब्द आता है तो वो बाप दादा हो गए कि नहीं है और शारदा कौन हो गई जगत पिता है तो जगदम्बा भी होगी और
पांडव की तरफ से
हैं
पांडव की तरफ से शांति को बल्कि कृष्ण पौरवों की सभा में जाते हैं
कृष्ण
शांति दूत बनकर
पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके जाते हैं कौरवों की तरफ
पौरवों की सभा में जाते हैं
हाँ जी
तो वहाँ पर इंद्रप्रस्थ के बारे में दुर्योधन बताता है ये तो मिलता ही नहीं तुम्हारे को इसके बदले में 5 गांव पूछते हैं
हाँ
बताया जाता है काशी कश्मीर और हस्तिनापुर दिल्ली शहर सतारा
हैं
काशी कश्मीर और हस्तिनापुर
हाँ
दिल्ली शहर सतारा
हाँ
गांवों का नाम होता है
हाँ
और बैठने के लिए अपूर्ण दे दीजिए ताकि मतलब सब तुम्हारे दुर्योधन को कहते, फिर भी दुर्योधन कहता है, दुर्योधन वापस उत्तर देता है, भूमि में मिले सुई के नाके रण संग्राम बिचारा।
हाँ।
इसमें पांच जो गांव का नाम लिया गया है।
हाँ।
ये चैतन्य आत्मा है या जड़ जमीन जगत का बताया गया?
पांडव कितने हैं? पांच पांडव हैं। जो पांच पांडव हैं उनका अपनी अपनी धर्म स्थली भी होगी कि नहीं होगी? जैसे बौद्धियों का बौद्धि खंड कहा जाता है, सिखों का पंजाब कहा जाता है, इस्लामियों का अरब देश कहा जाता है, क्रिश्चियंस का यूरोपीय देश कहा जाता है, तो ऐसे ही पांच पांडवों के पांच खंड हैं। दो पांडव हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, बाकी रहे तीन, बौद्धियों का बीज, सन्यासियों का बीज और सिखों का बीज। जो बीज हैं उस धर्मखंड के पिता हैं, मुखिया हैं, उन धर्मखंडों की राजधानी है, तो वो ही पांच गांव हो गए बीज रूप में।
वो भी शास्त्रों की ही बात हो गया ना?
हाँ जी।
तो उसको सही कैसे मान लें? उसको तो
है
उसके बारे में सोचना है या उसके बारे में अर्थ निकालना, वो भी वेस्ट हो जाता है, निरर्थक हो जाता है।
क्यों? उसका तो अर्थ निकल रहा है ना। पांच पांडवों की बात मुरली में नहीं आई है क्या? नहीं आई है। और झाड़ के चित्र में पांच धर्म भारतीय धर्म नहीं है क्या? है या नहीं है? तो क्या शास्त्रों से बाहर की बात हो गई?
तो उसी तरह जैसे पहले तो पहले पूछ रहे थे ना।
कौन पूछ रहा था?
तो कोई पूछ रहे थे ये जो आठ ये है
क्या है?
शरीर में जो चक्र है,
है?
शरीर में जो चक्र है,
हाँ,
और वो ग्रह है, उसके बारे में सोचना भी निरर्थक बताया आपने।
वो तो जड़ है बाबा, बेहद की बातें करते हैं या हद की बातें करते हैं? बाबा तो सारी बेहद की बातें करते हैं और बताए भी देते हैं। वो आसमान के जड़ सितारे हैं और तुम चैतन्य सितारे हो। तो उन आसमान के जड़ सितारों के बीच में जड़ नौ ग्रह नहीं है क्या? तो क्या बाबा की वाणी से अलग कोई बात है उनमें? अलग बात तो नहीं है। शास्त्रों से टैली कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने जो बातें बोली हैं उनका मनन चिंतन मंथन करना, उन बातों की गहराई में जाना, विस्तार में जाना, ये गलत बात नहीं है। बाकी जिन बातों को बाबा ने बोला ही नहीं है वो बातों को उठाना जैसे भूसे को उठाना है।
अगर गुप्त पुरुषार्थ करो ऐसा बोलता है, और बोलता है ज्ञान बांटने से ज्ञान अधिक होता है, ज्ञान बांटने से अधिक होता है, तो कौन सही है? गुप्त पुरुषार्थ सही या ज्ञान?
दुनिया जानती है कि ये जो ज्ञान बांट रहे हैं ये भगवान का ज्ञान है। ये गुप्त हुआ या प्रत्यक्ष हुआ? गुप्त ही है। और
बाबा एनएस वाले ये वार्तालाप और मुरली का सीरीज देखते हैं?
वो स्टूडेंट नहीं है, है?
नई दुनिया का फाउंडेशन है ना?
फाउंडेशन है, नई दुनिया तो नहीं है। दुनिया फाउंडेशन को देखती है, गड्ढे के अंदर खोद के देखती है मकान को, या ऊपर देखती है? आप क्या देख रहे हैं? मेरा लौकिक पति कोऑपरेटिव बैंक में काम करते हैं, उनकी भट्टी नहीं हुआ है क्योंकि उनको लंबी छुट्टी नहीं मिल सकती है। उनका तनख्वाह 25,000 रुपया है। अगर नौकरी छोड़ें तो 10,00,000 फंड पाते हैं, इसलिए वो नौकरी छोड़ना चाहते हैं। तो क्या करना है? 10,00,000 रुपए अगर बैंक में जमा करेंगे तो कितना रुपया पर मंथ मिलेगा?
10,000 के कम,
लगभग 10,000। ब्याज के ऊपर ब्याज भी चढ़ता है 3 महीने के बाद, तो 10,000 ये हो गया, और 25,000-30,000 जो उनको मिलते हैं वो उनकी असली तनख्वाह नहीं है। 25,000 जो मिलते हैं वो असली तनख्वाह है या उसमें से कुछ कट जाता है तब 25,000 है? कटने के बाद 25,000 मिलते हैं, तो असली तनख्वाह ज्यादा हुई ना। तो अगर वो नौकरी 20 साल की उम्र पूरी होने के बाद छोड़ते हैं, VRS लेते हैं, तो उनको पूरी पेंशन मिलेगी। 30,000 का आधा कितना हुआ है? 15,000, और 10,000 इंटरेस्ट के कितना हुआ है? 25,000। तो फालतू की मेहनत हो रही है, बोलो। अरे अभी जो मेहनत कर रहे हैं जिसमें 25,000 मिलते हैं और छुट्टी कुछ भी नहीं मिलती, ईश्वरीय ज्ञान का कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तो VRS अगर ले लेते हैं तो उनको फायदा है या नुकसान है?
फायदा है,
फायदा है। अभी जो मेहनत कर रहे हैं नौकरी करने की वो फालतू हो जाती है। ओम शांति।